मेरा नाम स्वामी भक्ति वेदांत नारायण है।
स्वागत करता हूँ। फिलहाल हमारे श्रोताओं को सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हुए हैं और आपका खास मकसद यहाँ आने का क्या था।
मैं भारतवर्ष में वृंदावन और मथुरा का रहने वाला हूँ। मैं सन्यासी हूँ। मैं भारतीय वैदिक ज्ञान और क्या संस्कृति का प्रचारक हूँ। बहुत दिनों तक हमने गुरु जी की सेवा करके जो कुछ हमने प्राप्त किया है उनके आदेश से सारे विश्व में भारतीय ज्ञान और वैदिक संस्कृति का प्रचार करने के लिए मैं देश विदेशों में घूम रहा हूँ। आज सौभाग्य से मैं फिजी में आया। यहाँ उतरते ही मैंने देखा ये कोई विदेश नहीं बल्कि हमारा छोटा भारत ही है। यहाँ के रहने वाले, यहाँ के दूसरे लोग बड़े प्रेम के साथ में हमारे साथ में व्यवहार किया और वो जानना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या है। यहाँ पर मैंने सुबह में और बार टाउन में यहाँ पर हमारे प्रोग्राम हुए जिसमें हमने भारतीय संस्कृति के संबंध में बतलाया कि विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि करने वाले, पालन पोषण करने वाले और अपने में सबको समेट लेने वाले प्रभु एक हैं। वही पर ब्रह्म तत्व हैं संसार में। उन्हीं को भगवान कहा जाता है। वे बड़े दयालु हैं, जीवों का कष्ट नहीं सह सकते, इसलिए वो जगत में पहले अवतार लेकर और जीवों को कैसे वो सुखी हो सकते हैं ये बतलाते हैं। इसलिए उनका पहला अवतार है शब्द के रूप में, ओंकार के रूप में। यह ओंकार भगवान का एक शब्द स्वरूप रूप है। इससे गायत्री पैदा हुई। इस गायत्री से ही चारों वेद हमारे उत्पन्न हुए। इन वेदों में उपनिषद का महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें ये बतलाया गया, उपनिषद की व्याख्या भागवत में की गई, गीता में की गई है। गीता भी एक उपनिषद है और भारत के समस्त ग्रंथों में भागवत को सबसे प्रमाणिक माना जाता है किसी भी विषय के लिए। तो उसमें ये बतलाया गया वेद शास्त्र इत्यादि सब में कि हम शरीर नहीं हैं। संसार में दो प्रकार के वस्तुएं होते हैं, एक चित स्वरूप वस्तु और एक जड़, एक चिन्मय एक जड़। जिसमें ज्ञान नहीं होता, इच्छा शक्ति नहीं होती, दुख सुख की अनुभूति नहीं होती, स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं होती, वे जड़ कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। और जिनमें इच्छा शक्ति होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, उनको चेतन कहते हैं। ये चेतन पदार्थ भी दो हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। चेतन आत्मा सबके हृदय में विराजमान है। जब तक वो शरीर में रहता है तब तक ये जीवित रहता है। जो ही आत्मा निकल जाती है वो मर जाता है, उसको मरना कहते हैं। इन सब जीवात्माओं को कंट्रोल करने वाला परमात्मा है, उसी का नाम गॉड है, उसी का नाम ही स्वयं भगवान कृष्ण है। वो इनमें उपदेश दिया गया कि हम जड़ शरीर नहीं हैं। पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि जितने भी लिविंग बींग हैं उनके अंदर में आत्माएं हैं और उनका साक्षी, उनको कंट्रोल करने वाला, परिचालना करने वाला उसमें जो परमात्मा है वही स्वयं भगवान है। वह एक होकर के भी समस्त जीवों के साथ इस शरीर में हैं, किंतु जो ही आत्मा निकल जाती है प्राण निकल जाता है या मरा हुआ कहलाता है, डेड बॉडी कहलाता है, उस समय इसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं रहती। इस जन्म में जन्म ले करके इस शरीर में नाना प्रकार के दुखों को भोग करता है, कभी जन्म लेता है, कभी मरता है, कभी सुख भोगता है, कभी दुख भोगता है, कभी सुअर कुकत कुत्ते इत्यादि विभिन्न निम्न योनियों में जन्म ग्रहण करता है, कभी मनुष्य में आता है, सब जगह सुख खोजता है किंतु सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ये सुख पाने की विधि नहीं है। हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल अंश हैं। जब तक कि भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं होगे, भगवान के साथ में हमारा मिलन नहीं होगा, तब तक कोई भी जीव आत्मा सुखी नहीं रह सकती। इस संसार में हम इस शरीर को धारण करके शरीर को बचाने के लिए, सुखी रहने के लिए हम चेष्टा करते हैं। आत्मा नाम की कोई चीज़ हम नहीं जानते जिसके भीतर में क्या है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये चोरी रहती है, खाओ पियो मौज करो फिर मर जाओ। अपने खाने के लिए, सुख के लिए दूसरे प्राणियों का वध करते हैं, किंतु नहीं जानते हैं कि हम जिनका वध करते हैं वो भी वध होने के बाद मनुष्य जन्म लाभ करके हमको खाएंगे या किसी भी योनि में। इसलिए मांस मछली इत्यादि नहीं खा करके किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो और भगवान का बचपन से ही भजन करो। भगवान बड़े दयालु हैं, ये थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस शरीर में आकर के मनुष्य अपने भोगों के लिए चेष्टा न कर या जानने की चेष्टा करे, मैं कहाँ से आया, क्यों आया, मरने के बाद हमें कहाँ जाना है। हम अजर अमर हैं किंतु शरीर में हैं कहाँ और कौन है, इस चीज़ को जानने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। खाना पीना भोग करना, ये तो दुख भोग करना, ये तो पशु पक्षी गधे और सभी लोग करते हैं, कुत्ते और सुअर तक करते हैं। मनुष्य जीवन यदि खाने पीने और भोग करने में ही सुकर और कुकर की भांति बिता दिया जाए तो वो जन बेकार व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन लाभ करके बचपन से ही कुछ आत्मा की अनुभूति के लिए, परमात्मा की अनुभूति के लिए कुछ चेष्टा करनी चाहिए। इस चेष्टा का नाम ही भक्ति है। भक्ति मैंने भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान का अर्चन करना, पूजन करना, ये भक्ति कहलाता है। ये भक्ति थोड़े दिनों में ही जीव के हृदय को निर्मल कर देती है और साधु संग और गुरु का मिलन कराकर और पुनः उसे और शुद्ध करके भगवान की सेवा में नियुक्त कर देता है। और ये शरीर के छोड़ने के बाद में फिर उसका जन्म मरण नहीं होता और अंत में ये शरीर को छोड़ करके, मन को भी छोड़ करके, शुद्ध होकर के गोलोक वैकुंठ में भगवान के समीप पहुँच कर उनकी सेवा को प्राप्त करता है। जब तक ये ऐसा नहीं होगा तब तक जन्म जन्मांतरों में संसार में घूमता रहेगा, तरह तरह की योनियों में जन्म लेगा। बड़े दुर्लभ से भगवान की कृपा से हमने मनुष्य जन्म पाया है, इसलिए इस जन्म में भगवान की सब प्रकार की भक्तियों में सरल सहज भगवान का नाम लेना है। भगवान के बहुत से नाम हैं किंतु उन नामों में से सबसे श्रेष्ठ बतलाया गया महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ के लिए, तपस्या के लिए, ध्यान के लिए बहुत परिश्रम की जरूरत है, तो अभी मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मन को पवित्र नहीं किया जा सकता। किंतु एक महाव्यभिचारी व्यक्ति भी, पापी व्यक्ति भी, मनुष्य भी, गधा भी, घोड़ा भी, कोई भी हो, भगवान का नाम कर सकता है। चाहे वो स्नान करे न करे, पवित्र रहे अपवित्र रहे, किसी भी अवस्था में भगवान का नाम किया जा सकता है। यहाँ तक कि छींक समय में, छींकते समय, पैर फिसलते समय, रात में, दिन में, जब कभी भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। इसमें पैसे की खर्च की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बूढ़ा आदमी, लंगड़ा आदमी, बूढ़ा आदमी मरते समय में भी भगवान का नाम ले सकता है। इसलिए इसमें कोई एनर्जी की और ताकत की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बुद्धि की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी भगवान का नाम बड़े प्रेम के साथ में आरती और विनय के साथ में ग्रहण कर सकता है। इसी को कहते हैं संकीर्तन। यदि मनुष्य ध्यान नहीं कर सकता है, तप नहीं कर सकता है, यज्ञ नहीं कर सकता है, किंतु ये सब समय में भगवान का नाम कर सकता है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जो बोल नहीं सकते किंतु उनके अंदर में अनुभूति है, वो लोग भी उनके भी कान होते हुए सुन सकते हैं। भगवान का नाम सुन करके उनका भी कल्याण होता है। इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी भगवान के अवतार स्वयं भगवान आकर के उपदेश दिया, हरे राम हरेर नाम अव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नाम कीर्तन और नाम जपने की अपेक्षा और कोई सरल सहज साधन मनुष्य के लिए नहीं है। इसलिए मनुष्य मात्र को ही भगवान का नाम करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। ये सब चीज़ें वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में स्पेशल रूप से, विशेष रूप से श्रीमद्भागवत में इसको बतलाया गया। एक आदमी अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपनी स्त्री को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और एक वेश्या के साथ में मिलकर के उसके बहुत से पुत्र हुए। वो डकैती लूट मार करता था, दूसरों को जान से मारता था, किंतु अपने स्वभाव के कारण उसने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। मरते समय 84 वर्ष की उम्र में जब मर रहा था, हठात जम के दूत उसके सामने आए और उसकी आत्मा को पकड़ करके ले जाना चाहा। उस समय अपने पुत्र को स्मरण करके नारायण नारायण उसने नाम किया, साथ ही साथ विष्णु के दूत आकर जम दूतों को भगा दिया, इसके प्राणों की रक्षा की और इसके बाद में इसको छोड़ दिया। इसके पश्चात वो हरिद्वार में गंगा में स्नान करके पवित्र होकर के नारायण नारायण नाम उच्चारण करने लगा। कुछ दिनों में ही ये शरीर को और मन को छोड़ करके शुद्ध होकर के भगवान के धाम वैकुंठ में पहुँच गया। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम बड़ा भारी प्रभावशाली है और शक्ति है। भगवान के जितने गुण हैं सब इस नाम में, ये नाम भगवान का ही स्वरूप है, इसको सब लोगों को करना चाहिए यदि वो कल्याण चाहते हैं।
बताते स्वामी जी, बचपन में क्या कभी आप ये सोचे थे कि आप आगे चल के अपने जीवन में एक सन्यासी होंगे और एक स्वामी जी बनेंगे? कैसे आपके दिल में ये दिलचस्पी पैदा हुई कि आप इस प्रकार से अपने बचे हुए जीवन को व्यतीत करेंगे?
बचपन में हमारा जब से ज्ञान हुआ है तब समय भगवान का नाम बचपन से करता था। न जाने कैसे स्वाभाविक ये रुचि हो गई। चलते समय, स्कूल में जाते समय भगवान का नाम करता था, रामायण पढ़ता था, भागवत पढ़ता था, गीता पढ़ता था। कुछ दिनों के बाद में मैंने स्कूल कॉलेज की परीक्षा, जबकि हमने शिक्षाएं प्राप्त कर ली, तो मैं नौकरी जीवन में गया, गवर्नमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट में एक अफसर हुआ। कुछ दिनों के बाद में वहीं पर एक संत मिल गए हमारे गुरुजी, उनके मुखारविंद से हमने भागवत सुना और ये सब तत्व ज्ञान समझा सुना। मैंने साथ ही साथ संसार को परित्याग कर दिया और उनके चरणों में आश्रय ग्रहण किया। फिर वहीं पर हरिनाम दीक्षा हुई और उन्होंने हमको संन्यास दिया और विश्व में सर्वत्र पाठ प्रचार करने के लिए और साधन भजन करने के लिए हमें आदेश दिया। तभी से हम इधर में संन्यास लेकर के 1954 में अंग्रेजी साल में मैंने संन्यास लिया और तब से इधर उधर में प्रचार कर रहा।
ये गुरु जी कौन थे?
हमारे गुरु जी का नाम है श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। ये जगत में प्रसिद्ध प्रभुपाद थे, जो जगत में विश्व में सर्वत्र भगवान का नाम प्रचार किया, भक्ति प्रचार किया। उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद। उन्हीं के ये शिष्य थे। उन्हीं के एक दूसरे शिष्य थे जिनका नाम है श्री भक्ति वेदांत स्वामी, जो जिसको लोग आजकल प्रभुपाद कहते हैं, जिन्होंने विश्व में सर्वत्र आजकल प्रचार किया है। अब वो नहीं हैं, परलोक चले गए। दोनों गुरु भाई थे। उन्होंने हमारे गुरु जी ने ही भक्ति वेदांत स्वामी को संन्यास की दीक्षा दी थी और उनका नाम भक्ति वेदांत स्वामी जी रखा था। और हमने पहले ही उनसे जो लिया था, हमारा नाम रखा था भक्ति वेदांत नारायण। हम लोग एक तरह से गुरु भाई भी हैं और हमसे वो प्राचीन और हमसे सीनियर थे, हम उनको अपना शिक्षा गुरु मानते हैं। उन्होंने जहाँ तक विश्व में प्रचार किया था, हम उन सब देशों में जा रहे हैं, वो लोग बड़े प्रेम से हमें बुला रहे हैं और हमारे भारतीय संस्कृति के विचारों को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं।
तो जब हम अपने सुनने वाले श्रोताओं को इस विशेष भेंटवार्ता को प्रस्तुत करेंगे तो शुरू में हम आपको किस प्रकार से आपका परिचय देंगे?
कहेंगे कि एक भारतीय सन्यासी वैदिक धर्म और संस्कृति का प्रचार करने के लिए विश्व के सब राष्ट्रों में घूमते हुए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, मेक्सिको और सब ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में घूमते हुए चारों तरफ में प्रचार कर मैं कर रहा था। उस समय में यहाँ के फिजी के कुछ लोगों ने हमसे आग्रह किया कि आप यहाँ पर आकर के प्रचार करें, यहाँ पर हम बहुत से लोग सनातनी हिंदू हैं इसलिए आपके प्रवचन को सुनना चाहते हैं। तब मैं वहाँ से यहाँ आया और यहाँ पर कांतिलाल जी और इनके सहयोगी सनातन हिंदू धर्म के प्रतिष्ठा करने वाले इन लोगों ने हमारे सारी जगह व्यवस्था कर दी जहाँ पर कि यहाँ पर मैं प्रचार कर रहा हूँ और बड़ी संख्या में बड़े श्रद्धा के साथ में ये सब लोग हमारे मुख से भागवत की कथा, वेदों की कथा ये सब लोग सुन रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्वामी जी।
आपको भी मेरा हार्दिक धन्यवाद है जो हमको आपने यहाँ बुलाकर और हमारे प्रचार का जो उद्देश्य है वैदिक संस्कृति का प्रचार हो, इससे ही जगत का कल्याण हो सकता है। आपने यहाँ पर मुझे बुला करके हमें समय दिया इसके लिए आपको विशेष विशेष धन्यवाद है।
तो मुझे अपने पोस्ट से संपर्क करने में कुछ समय लगा, हालांकि मैं जानता था कि आप यहाँ पर थे, ये जो संजय कांति जी हमें बराबर संपर्क करते रहे, ये लोग मुझे तंग करते रहे कि कब आप स्वामी जी को बुलाएंगे, तो मैंने कहा मैं ज़रूर बुलाऊंगा उसे। और ये मैं भी परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे लोगों के साथ हमारा मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ और स्वामी जी आपके आशीर्वाद से मैं अपने घर वालों तक को भी ये जो इंटरव्यू हुई इसे मैं अपने घर पर भी ले जाकर और अपने बच्चों को सुनाऊंगा, खास करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही
धार्मिक। आपको कभी समय मिले, अब आज ही तो हूँ, इसके बाद में मैं लौट जाऊँगा।
अच्छा,
यदि आपको समय मिले तो हमारे प्रवचन में वहाँ पर 7:30 से 8:30 बजे
तक मंदिर में याद है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा वादा नहीं, मैं कोशिश करूँगा जरूर।
मुझे प्रसन्नता है कि आप हिंदी बोल अच्छी तरह से साफ बोल ले
थोड़ी बहुत।